श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। मनसस्कार इंद्रियां जो सातवें श्लोक में बोला था, अब इस नवें श्लोक में बता दिया ये छह क्या है। श्रोत्रं चक्षु दो, स्पर्शनं तीसरा, रसनं चौथा, घ्राणं एव च पांचवा, अधिष्ठाय मनश्चायं अधिष्ठाय छठवां मन, इनको अधिष्ठाय विषयानुपसेवते, इन्हीं के द्वारा फिर वो हो विषयों का सेवन करता है। जीव की एक विशेषता ये भी है कि विषयी होता है और विषयों का सेवन करता है। कैसे करता है, किसके द्वारा करता है, तो अभी सब बात आ गई। कैवल्य उपनिषद में थोड़ा विस्तार से दिया हुआ था, तो वहां आप देख चुके हो, जनों सावधानी से देखा होगा, ऋषियों ने वहां पर बता दिया कि देखो ये सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, जीव किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर एक दूसरे शरीर में कैसे जाता है। फिर ये भी बता दिया कि यहाँ पर जो है ये तो स्थूल शरीर तो भोग आयतन है, और ये जो है सूक्ष्म शरीर भोग साधन है, हा? और इनके द्वारा जीव जो है वो इसके द्वारा भोग साधन के द्वारा अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का भोग करता है। तो उसके विषय सुख दुख ही उसके विषय है, उनका वो भोग करता है। जैसे कोई डाइनिंग हॉल में बैठ करके थाली कटोरी गिलास चम्मच के द्वारा उनमें परोसा हुआ भोजन खाता है, इसी प्रकार से शरीर रूपी डाइनिंग हॉल में यह पांच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया मन बुद्धि आदि इन थाली कटोरियों इत्यादि के द्वारा वो भोग करता है। किस बात का भोग करता है, वहां भोग कोई वस्तु में नहीं है, वहां जो भोग है सुख दुख का भोग है। जीव भोग रहा है, सुख भोग रहा है तो जीव भोग रहा है, दुख भोग रहा है तो जीव भोग रहा है। ये भोग्य पदार्थ ही है, माने जीव का भोजन यही है। जीव कभी दुख खाता है और कभी सुख खाता है, सुख दुख खाते खाते बस उसका जो है यात्रा करता रहता है, चलता रहता है। और जब तक सुख दुख खाने को मिलता रहता है तब तक जीव मोटा रहता है, अगर सुख दुख खाने को न मिले तो जीव दुबला हो जाए और जीव भाव ही समाप्त हो जाए। जीव भाव समाप्त हो जाए तो फिर क्या हो, ब्रह्म भाव रह जाए, क्योंकि ब्रह्म भाव प्राप्त होने पर सुख दुख नहीं है। जैसे आदमी को जब तक खाना मिलता रहता है तब तक मोटा। संस्कृत में जहां पर ये ग्रंथ हैं उनमें प्रमाण के ऊपर विचार किया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है। अर्थापत्ति में एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो महेश जो है वो खाता नहीं है, दिन भर नहीं खाता है, लेकिन देखो कितना मोटा है। तो अर्थापत्ति क्या हुई, इसके माने दिन में नहीं खाता तो रात भर खाता है, तब तक तो मोटा है, बिना खाए कैसे मोटा हो जाएगा। तक ऐसे कहीं कोई कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो एक ही बार खाते हैं, हम तो एक बार भी नहीं खाते, हम तो पानी पी करके रहते हैं, तो इसके माने क्या है, वो कुछ और खाता होगा जिसके कारण शरीर चलता है, जिसके कारण शरीर मोटा है। ये तो भाई ये शरीर जो अन्न में कोष है अन्न से ही चलता है, अब कोई ये चमत्कार दिखा रहे बिना अन्न के भी चलेगा, ये झूठी बात है बेकार के। ये तो शरीर चलता है अन्न से, जैसे ये शरीर चलता है ऐसे जीव का अन्न क्या है, सुख दुख। जब तक जीव को सुख दुख मिलता रहता है तब तक जीव भाव चलता रहता है, और जहां सुख दुख उसको न मिले और जहां आसक्तियां कम होने लगे, जहां उसके जो है वो अविद्या नष्ट होने लगे, अहंकार दुर्बल होने लगे, तो जीव का क्या होगा, जीव भाव समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, जीव खत्म हो जाएगा। ये शरीर मर जाता है तैसे जीव भी मर जाता है। जीव मर जाता है कि मैंने जीव का खोखला मर जाता है, बाकी वो जो है आत्मभाव से तो रहता ही है, मरने का प्रकार तो नहीं। जैसे शरीर मर जाता है तो वो जीव तो नहीं मर जाता, इसी प्रकार से जीव मर जाता है तो कोई आत्मा थोड़े मर जाता है, आत्मा फिर भी विद्यमान रहता है, जीव समाप्त हो गया। एक फिजिकल डेथ है, शरीर से जब मरे तो फिजिकल डेथ हो गई, और दूसरी जो है वो हो अगर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर छूट गए तो एक दूसरी डेथ हो गई, इसको कहते हैं मिस्टिक डेथ, ये रहस्यमयी मृत्यु है। तो ये जब तक कि रहस्यमयी मृत्यु मिस्टिक डेथ जब तक नहीं होती तब तक जीव भाव रहता है, सुख दुख खाता हुआ, भोजन करता हुआ, जीव यात्रा करता रहता है, और जब उसको एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में भी जाता है, और एक शरीर जब दुर्बल हो गया, वृद्ध हो गया, समाप्त हो गया, तो एक शरीर छूट गया, दूसरा शरीर उसे प्राप्त हो जाता है। ये है सब जीव का असली रूप, आत्मा, फिर जीव भाव, जीव को फिर शरीर धारण करना, उस शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर में जाना, और जीव करता क्या रहता है, शुभाशुभ कर्म करता रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। ये जीव का इतिहास हो गया।